जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
Sean.
नित्य एक बगीचे में जाया करते थे। वहां जाकर अपने पेड़ पौधों से बातें करते थे। कभी आपने भी की होंगी। ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है। अगर आप अपने पौधों से नित्य प्रेम से बात करते हैं तो वह जल्दी बढ़ते हैं। आप चाहें तो प्रयास कर लीजिए। घर पे आप दो पौधे रखिए, बिल्कुल एक जैसे। एक पौधे को जब आप सुबह जल डालें, उससे बात करें, प्रेम से बात करें, अपना प्रेम उसके ऊपर निछावर करें। जैसे आप छोटे बच्चे को सहलाते हैं ना, ऐसे अपने पौधे को सहलाएं। मेरा अच्छा पौधा, जल्दी बड़ा हो जा, बहुत सुंदर हो जा, हरा भरा हो जा, तेरे ऊपर फल लगे आदि आदि। जैसे कि आप एक बच्चे को सराह रहे हो, बच्चे के सर पे हाथ फेर रहे हो, बच्चे पे प्रेम निछावा कर रहे हो। अगर आप किसी जानवर के ऊपर भी प्रेम से हाथ फेरते हैं ना, मान लीजिए कुत्ते के ऊपर हम प्रेम से हाथ फेरते हैं, वह दूध मिलाता हुआ आपके पास आता है, आपके प्रेम को समझते हुए। आपके पास दो पौधे हैं, एक पौधे पे आप प्रेम निछावा कर रहे हैं और दूसरे पौधे पे अगर आप मान लीजिए तो कोस रहे हैं। मैं गाली तो नहीं बोलूंगा, गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं या कड़वाहट अपने उत्पाद निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डिजेक्शन, आपके अंदर जो क्रोध भरा हुआ है आप उसके ऊपर डाल रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जिस पौधे पे आप प्रेम प्रकट कर रहे थे वह जल्दी बड़ा हो रहा है, हरा भरा हो रहा है, और जिस पौधे पे आप कड़वाहट डाल रहे थे वह मुरझा जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि पौधों में जीवन होता है, जान होती है। वेद तो ये भी कहते हैं कि जो पत्थर है उसमें भी जान है, लेकिन पत्थर आपसे बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, एक प्रकार की आत्मा उनके भीतर भी है। जैसे कि अगर आप किसी जानवर से बात करते हैं, मान लीजिए कुत्ते के बात करते हैं, कुत्ते के ऊपर प्रेम से सर हाथ फेरते हैं, कुत्ता तो मिलाता है, वह आपके प्रेम को समझता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है। पौधे के ऊपर अगर आप प्रेम से हाथ फेरते हैं, पौधा हिले डुलेगा नहीं, लेकिन आपके प्रेम को समझेगा, जल्दी बड़ा होगा, खुश होगा। उसी प्रकार से अगर पत्थर के ऊपर हाथ फेरते हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। कोई तो ये कहता है कि पत्थर केवल आपकी त्वचा, आपके छूने की शक्ति को पहचान पाता है, सेंस ऑफ टच, आपकी स्पर्श शक्ति को पहचान लेता है। पौधा आपकी वाणी को भी जान लेता है। आपके शरीर में तो आभा निकल रही होती है, जो एनर्जी निकल रही होती है, जो आपका रेडियंस है, उसको पहचान लेता है। जानवर और जल्दी पहचान लेता है, वह दूर से आपको देख के आपके पास दौड़ा हुआ चला आता है, वे आपके नजरों को भी पहचान लेता है, आपकी आवाज को पहचान लेता है, आपके शरीर से निकलती हुई गंध को पहचान लेता है। और मानव की बात ही जाने दो, उसके बाद समझते हैं बहुत कुछ जानने का, पहचानने का। पत्थर आपके स्पर्श को पहचान लेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाता। पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, अगर आपका स्पर्श आपकी वाणी मीठी है तो, आपके कर्म में प्रेम है तो। कुत्ता दूम मिलाता हुआ आपके पास आएगा, आपके तलवे चाटेगा। और इंसान आपको आलिंगन कर सकता है, आपका साथ निभा सकता है, आपको प्रेम लुटा सकता है अगर चाहे तो। विचार कीजिएगा, पत्थर, वैसे आप पत्थर से क्या उम्मीद रखते हैं? अगर वो चीज आज पत्थर है तो कल भी पत्थर रहेगा, 10 साल के बाद भी पत्थर रहेगा, 1000 साल के बाद भी पत्थर रहेगा। पौधे से क्या उम्मीद रखते हैं आप? पौधा बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, हरे भरे पत्ते देगा, फल देगा, फल में बीज होंगे, उससे और पौधे लगेंगे। जानवर से क्या उम्मीद रखते हैं? जानवर आपकी रक्षा कर सकता है, मान लीजिए कुत्ता है तो, आपका मित्र बन के आपके साथ रहेगा, वफादार रहेगा, फेथफुल रहेगा। इंसान से क्या उम्मीद रखते हैं? पत्थर की एक लिमिट है, एक सीमा है, पौधे की एक सीमा है, जानवर की भी सीमा है, लेकिन मानव की कोई सीमा नहीं है। पत्थर 1 साल में, 2 साल में, 1000 साल में पत्थर रहेगा, पौधा वृक्ष बन जाएगा, फल देगा, और जानवर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आपसे गुण मिल जाएगा, लेकिन इंसान संयम, उसका सामर्थ्य क्या है? उसका सामर्थ्य है वह अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहचान ले। संयम परमात्मा बन जाए, परमात्मा मैं बन जाए, ईश्वर में बन जाए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बगीचे में जाके अपने पौधों से बात करते थे। जाते एक पौधे को बोले, कैसे हो भाई पौधे, मैं तुमसे खूब प्रेम करता हूं, आई लव यू। कहते हैं प्रेम से फलीभूत होता हुआ पौधा भी उत्तर देता था अपनी मुख भाषा में, हे श्री कृष्ण, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे पौधे के पास गए, बोलते आई लव यू, पौधा बोलता आई लव यू टू, अपनी मुख भाषा में। भगवान श्री कृष्ण तीसरे पौधे के पास गए, उसके ऊपर हाथ फेरा, बोले जल्दी बड़े हो जाओ, शाबाश, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पौधे ने भी उत्तर दिया, मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, अपनी मुख भाषा में, ऑफ कोर्स। कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण बड़ी जल्दी में थे, बगीचे में घुसे, यहां वहां देखने लग गए, तो पौधों का महसूस हुआ, आभास हुआ कि कोई बात है, आज भगवान श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हैं, यहां वहां कुछ खोज रहे हैं, जो हमें इतना प्यार देता है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना उसके लिए। कहते हैं उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान क्या बात है, आप बड़े चिंतित लगते हैं या किसी सोच में डूबे हुए लगते हैं, क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने एक पौधे से कहा, कर तो सकते हो लेकिन तुम्हें बहुत दर्द होगा। पौधा एकदम खड़ा हो गया, मान लीजिए सीधा खड़ा हो गया, बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए सबको निछावर करने को तैयार हूं। भगवान बोले मुझे तुम चाहिए, आई वॉन्ट यू। अर्थात तुम्हें मैं तोड़ दूंगा या काट लूंगा या जड़ से उखाड़ दूंगा और तुम्हें दर्द होगा, फिर हो सकता है मैं तुम्हें तराशूं, चाकू से छीलूं, हो सकता है मैं कुछ भी और भी करूं, आपके शरीर में पीड़ा होगी। पौधा बोला प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जीवन आपके काम आ जाए मेरे लिए सौभाग्य है। और प्रसन्नता से पौधे ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। वह पौधा था बांस, बेंबू। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस बांस को जो अंदर से पहले खोखला था और खोखला किया, तराशा, उसमें कुछ छेद किए और उसकी बांसुरी बना दी और उस बांसुरी को सदैव अपने पास रखते थे, अपनी सांस से, अपने मुंह से निकली हुई हवा से उस बांसुरी को सुर देते थे, राग बजाते थे, मधुर संगीत उत्पन्न करते थे मेरे प्रभु। कहते हैं बहुत सी गोपियां भी कहा करती थी हे श्री बांसुरी आपने कौन सी तपस्या करी है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव आपको अपने पास रखते हैं, अपने अधरों से लगाते हैं, अपनी सांस को आपके द्वारा प्रवाहित करते हैं और संगीत उत्पन्न करते हैं। आप जानते हैं ये बांसुरी क्या है? ये बांसुरी मानव का शरीर है। बांसुरी में जितने छेद होते हैं ना उतने ही छेद मानव के शरीर में भी होते हैं। दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुख, एक नाभि, दो मल मूत्र त्यागने के छिद्र। नौ छिद्र हो गए। ये अलग बात है कई मांसुरियों में सात छिद्र भी होते होंगे और कम होते होंगे, वो उस प्रकार से बनाई जाती हैं अलग प्रकार के सुर निकालने के लिए। लेकिन दक्षिण भारत में जो बांसुरी हुआ करती थी उसमें नौ छिद्र होते थे। मानव का शरीर एक बांसुरी की तरह है, लेकिन क्या परमात्मा इस मानव नामक शरीर के बांसुरी का रूप दे के प्रयोग में लाते हैं? बांसुरी ने पहला काम क्या किया? अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान मैं अपने आप को आपको अर्पित करती हूं या करता हूं, आपको जो करना करो। डू वी हैव दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड, दैट टाइप ऑफ कैपेसिटी टू सरेंडर? क्या हमारे भीतर वो सामर्थ्य है कि हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें? हम भगवान से बोले भगवान जो करना है करो, मेरा शरीर आपके लिए है, यूज इट एज यू विश। विचार कीजिएगा, बांसुरी अंदर से खोखली है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने भीतर हाथ डाल के अपनी हड्डियों को, मांसपेशियों को, रक्त को बाहर निकाल दें और खोखला कर दें, पूरा शरीर पिचक जाएगा। खोखलेपन का अर्थ है हमारे अंदर छह प्रकार के शत्रु हैं, छह कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज ऑफ एनिमीज। कौन सी है? पहले है काम। एक काम एक कैटेगरी है। काम के अंदर क्या आता है? इच्छा, डिजायर्स, लस्ट, विचार कीजिएगा, वासनाएं, शारीरिक वासनाएं, सेक्सुअल अर्जेस, संभोग की वासनाएं। तो कैटेगरी है काम। जब तक हमारे भीतर काम भरा रहेगा, हम काम से भरे हुए रहेंगे, हम परमात्मा को कैसे जाएंगे? परमात्मा हमारे शरीर का प्रयोग कैसे करेंगे? कहीं न कहीं हम मौका ढूंढ के अपनी इच्छा पूर्ति में लग जाएंगे। या ये भी हो सकता है हम भगवान से बोले, भगवान मेरे शरीर का प्रयोग करो, साथ पीछे पीछे मन में चल रहा होगा कि भगवान भी तो मुझे कुछ देंगे। आई विल बी ऑन द फ्रूट ऑफ द एक्शन। फल की कामना लेके परमात्मा को श्री अर्पित कर रहे होंगे। पहली कैटेगरी है काम, दूसरी है क्रोध। क्रोध का मतलब एंगर। एंगर को बोलते हैं आग बबूला होना, गर्म हो जाना, जल जाना, उबल जाना। सारे शब्द अग्नि से जुड़े हुए हैं। कहते हैं क्रोध अग्नि के समान है, लेकिन जला किसको रहे? आप जिसके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं उसको नहीं, आप अपने आप को जला रहे हैं। जो व्यक्ति क्रोधित हो रहा है, जिसके अंदर क्रोध भड़क के आ रहा है, पनप रहा है, वो जल रहा है अंदर से। एक क्षण का क्रोध छह महीने की भक्ति जलाता है। अगर आपने एक वर्ष में दो क्षण क्रोध कर लिया तो पूरे साल की भक्ति जल के खाक हो गई। क्रोध में उठा हुआ कोई भी कदम अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है मोह, अटैचमेंट। मोह में पड़ के व्यक्ति गलत काम कर लेता है। मोह में पड़ के जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अपने ही कुल का विनाश करवा लिया। चौथी कैटेगरी है लोभ, ग्रीड। आपको भूख लगी है, आप खाना खाएंगे, कितना खा लेंगे? एक रोटी, दो रोटी, दस रोटी, बीस रोटी, एक लिमिट है। आप सो रहे हैं, कितना सो लेंगे? एक घंटा, दस घंटे, बीस घंटे, एक लिमिट है। प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं, कितना पी लेंगे? एक कप, एक जग, एक बाल्टी, एक लिमिट है इसमें भी, एक सीमा है। गुस्सा भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, उसमें भी लिमिट है। लिमिट नहीं है तो केवल लालच की, ग्रीड की। लालच बढ़ता रहेगा, आप उसमें डूबते रहेंगे। पांचवी कैटेगरी है काम, क्रोध, मोह, लोभ के बाद मद। मद करता है ईगो, अहंकार। हर चीज में आ जाए, मैं करने वाला हूं, मैंने किया है, आई एम द डूअर, आई की भावना। और छठी कैटेगरी है मत्सर अर्थात जेलसी, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना। ये चीज उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? लोग उससे बात करते हैं, मेरे से बात क्यों नहीं करते? लोग उसकी महिमा गाते हैं, मेरे क्यों नहीं गाते? वाई नॉट मी? अपनी तुलना करना बार बार। तो छह कैटेगरी है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। अगर हम इन छह कैटेगरी को अपने भीतर में से अर्थात मन में से बाहर निकाल लें, हमारा मन अगर खोखला हो जाता है तो हमारा शरीर एक बांसुरी की तरह बन जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण आपके शरीर का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू ऑफर इट टू गॉड, ऑफर इट टू हिम। आप इसको परमात्मा को संपूर्ण रूप से दे दें, फिर भगवान आपके शरीर का प्रयोग करेंगे अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए, जो भी काम परमात्मा को। तब आपके शरीर में तो जो आभा निकलेगी वो प्रेम में हो जाएगी, आपकी वाणी भगवान की वाणी बन जाएगी, आपके कर्म भगवान के कर्म बन जाएंगे। जहां भी आप जाएंगे यू विल रेडिएट लव, आपके भीतर से प्रेम की आभा निकलेगी, वो आत्म तत्व है, वो आत्मा की प्रवृत्ति है। दिस इज द नेचर ऑफ द आत्मा, आत्मा स्वरूपों प्रेम स्वरूपों। इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग मेरे बाबा करते रहे हैं। तो बांसुरी बन के आप भगवान के काम आ सकते हैं, तब भगवान अपनी सांस आपके द्वारा प्रवाहित करेंगे, अपने राग आपके द्वारा गाएंगे, अपना वाक्य आपके द्वारा बोलेंगे। प्रयास कीजिएगा। जय श्री राम।